आए हम सब खुदा और अपने खुदा के सिर झुक जाएं और उसका कलाम जो हम सब के लिए रूहानी खुराक है मांगना शुरू करें कि खुदावंद आज की सुबह तेरा कलाम हम सब की मदद और रहनुमाई हो, हम सब दुआ करेंगे। इब्राहिम इसहाक यकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप, तू जो हर वक्त खुदा खुदा अपने बंदों और बंदियों की दुआओं पर कान लगाता है और तवज्जो करता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे हुजूर मांगते हैं कि आज का कलाम हम सब के लिए हो, आज का कलाम हमारे दिलों की खुदा खुदा तमाम खुदा खुदा बातों को दुरुस्त करे, जांचे, परखे और तेरे सलीब के पैगाम को खुदा खुदा हम समझने वाले बने। और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज की सुबह मांगते हैं तुझसे हिकमत और दनाई, आज की सुबह तलाश करते हैं तेरी खुदा खुदा अलाही मर्जी को, आज की सुबह खुदा खुदा तेरे हजूर खटखटाते हैं ताकि खुदा खुदा तुम्हारे लिए हिकमत के दरवाजों को खोल दे, खुदा खुदा खुशहाली के दरवाजों को खोल दे, तो हमारे लिए रास्ते बना ताकि खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरी गवाही के लिए इस्तेमाल हो सके। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां आ जाएंगी। जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकाले, नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाप, हम उसकी 18वीं आयत से 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक दौलतमंद शख्स की गुफ्तगू यीशु मसीह के साथ हो रही है, सवालों जवाब हो रहे हैं और वो सवाल यीशु पर करता है और यीशु उसके सवालों का जवाब देता है। जब जब हमारे पास कोई सवाल होगा तो एक ही शख्सियत है, एक ही किताब है जो हमें दुरुस्त जवाब दे सकती है और सही राह पर ला सकता है, वो कौन है जी? यीशु अल मसीह और खुदा का कलाम। सो जब हम इस हिस्से में पढ़ेंगे तो हमें एक दौलतमंद शख्स नजर आएगा जो इस सवाल पर क्या है जी सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारस बनूं। सो आए इस हिस्से को पढ़ें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जिनके पास बाइबल है वो निकालें लूका की इंजील 18 बाप उसकी 18वीं आयत को, जिनके पास नहीं है वो मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर से सुने। यूसुफ मेरी तरफ। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, क्या सवाल किया कि ऐ खुदा ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसे देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पत्रस ने कहा देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाई या भाइयों या माँ या बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातर छोड़ दिया हो और इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। जब हम इस वाक्या को पढ़ते हैं, इसमें शगीर्द मौजूद है, दौलतमंद बंदा मौजूद है जिसे सरदार कहा गया है, क्योंकि इस हवाले को पढ़ते हैं तो तीन अनाजील में इसका जिक्र मिलता है, लूका की इंजील में जिक्र मिलता है, मत्ती 19वें बाप में इसका जिक्र मिलता है, मरकस 10 बाप में इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ पर ये अमीर दौलतमंद शख्स क्या करता है, सवाल करता है खुदावंद यीशु मसीह से कि मैं क्या करूँ कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूँ। आज ये सवाल पूरी दुनिया में किया जाता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, और इसके बहुत से मुख्तलिफ जवाब लोग देते हैं। कोई कहते हैं निजात पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा जी, अपनी आमदन में से 10वां हिस्सा देना होगा ईमानदारी से, तब तुम्हें निजात मिलेगी। कुछ कहते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा जी, इकरार करना होगा कि मैं गुनाहगार हूं, और उसके साथ साथ क्या करना होगा जी, पानी का बपतिस्मा लेना होगा, गैर जबाने बोलनी होगी, और फिर कभी भी कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले तो तुम निजात पा सकते हो। कुछ कहते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा जी, झंडे के नीचे से गुजरना होगा और क्या करना होगा, उन तमाम हुक्मों पर अमल करना होगा ताकि तुम अपनी निजात पा सको। सो बहुत से मुख्तलिफ जवाब हमें बहुत से मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, और यहाँ पर जो जवाब आज हम सीखेंगे, यीशु का जवाब क्या है, यीशु का जवाब क्या है कि तुम किस तरह हमेशा की जिंदगी पा सकते हो। सो यहाँ पर क्या लिखा है, ये दौलतमंद आदमी क्या करता है, यीशु से सवाल करता है कि मैं कैसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु मसीह ने जब उसने ये यीशु से सवाल किया तो यीशु को कहता है ए नेक उस्ताद, यीशु मसीह से समझाने के लिए कहता है कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक कौन है, एक ही है, वो कौन है जी, खुदा है। दूसरे लफ्जों में यीशु से कह रहा है कि अगर तू समझता है कि खुदा ही नेक है और वो खुदा तुम्हारे सामने जिस्म में खड़ा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तू मुझे सिर्फ इंसान की हैसियत से कहता है कि तू नेक है तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि कोई भी नेक नहीं सवाए खुदा के, और वो खुदा जिसके बारे में मैं तुझे बताना चाहता हूं जिस्म में मुजस्म होकर तुझसे बातें कर रहा है। तो यीशु मसीह उसके सोच के निजाम को दुरुस्त करना चाहता है कि वो पहली बात तो दुरुस्त सोचना शुरू करे कि उसे क्या करना होगा। और यीशु मसीह ने जब उसे उसके सवाल का जवाब दिया तो यीशु ने कहा तू हुक्मों को जानता है, तू हुक्मों को जानता है। यीशु यहूदी है, ये शरा का आलम, ये दौलतमंद भी क्या है जी, यहूदी है, और यीशु मसीह से क्या कहता है तू हुक्मों को जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। यीशु मसीह ने यहां पर 5 हुक्म क्या किए हैं उसके सामने रख दिए, और इन 5 हुक्मों में से यीशु ने उससे कहा कि तू इन पर क्या करता है जी, अमल करता है। और उसने कहा हाँ यीशु, मैं लड़कपन ही से इन सब पर अमल किया है, करता आया हूं। तो यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ देखा कि हाँ ये हुक्म तो जिन पर अमल करता आया है, जब आगे देखते हैं 22वीं आयत में यीशु ने यह सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, और ये कमी क्या करेगी जी, रुकावट का बाइस बनेगी, रुकावट का बाइस बनेगी। तूने अमल तो बहुत किए हैं लेकिन अब वो मौका आ गया है कि तू जिसके बारे में जानता है, जिसकी ताबेदारी कर रहा है, खुदा के हुक्म को मानते हुए तूने गुनाह नहीं किया, झूठ नहीं किया, चोरी नहीं की, झूठी गवाही नहीं दी, अपने माँ बाप की इज्जत की है, अब तुझे वो एक ऐसा हुक्म देने वाला है जिस पर तूने अपनी जिंदगी में अभी तक अमल नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह से उसने कीमत पूछी है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये लफ्ज क्या है जी, ये जुमला कैसा है जी, जैसे आप और मैं कहते हैं कि किसी स्टोर पर चले जाएं जाकर कहें कि जी ये सबसे उम्दा अच्छी क्वालिटी वाली फ्रिज कितने की है, ये कितने में खरीद कर मैं इसका वारिस बन सकता हूं। और दुकानदार कहता है कि भाई ये बड़ी महंगी है, ये बहुत महंगी है, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इसमें क्या है जी आपका पानी भी ठंडा होगा, बर्फ भी जमाएगी, बर्फ की ढेलियां भी गिरेंगी और फिर आप इसको तब्दील कर सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ टेम्परेचर को, इसलिए ये जदीद फ्रिज है, इसके दाम रुपया पैसा बहुत ज्यादा, इसकी कीमत बहुत अहम बहुत ज्यादा है। तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे हर कीमत पर खरीदने को तैयार हूं, और जब दुकानदार की कीमत बयान करता था उसी कहते ओ मैंने तो सोचा था 30-40 हजार होगी लेकिन ये तो 3-4 लाख रुपए की है। और हम क्या होते हैं जी, हैरान हो जाते हैं। इस नौजवान ने भी क्या किया है, यीशु से कीमत जानने की कोशिश की है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे करना होगा कि हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही का क्या हो जाऊं जी, वारस हो जाऊं। यीशु मसीह ने जब उसे कीमत बताई तो वो कीमत क्या थी, अभी तक तुझ में एक कमी है और वो कमी क्या थी, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे। क्या कहा है जी, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे। मेरे साथ दे, कहें गरीबों को दे दे, गरीबों को दे दे। जब उसने ये बयान सुना तो वो परेशान हो गया, उसने सोचना शुरू कर दिया, मैंने तो सोचा था कि कीमत कुछ और होगी, हो सकता है कि मुझे कुछ रुपया पैसा देना हो सकता है कि कुछ हुक्म हो सकता है कि कोई ऐसी दुआ हो जो मुझे रटनी चाहिए, हो सकता हो ऐसी रस्म हो, कोई कुर्बानी हो, कोई ऐसा और हुक्म हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था उसके जहन में जो बात चल रही होगी कि इस हमेशा की जिंदगी का वारस बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपना सब कुछ गरीबों को देना होगा। यहां पर यीशु मसीह उसके सवाल पर कि अगर तू निजात पाने के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं तुझे निजात पाने के लिए कुछ करने को कहूंगा क्योंकि तू उसे नहीं कर पाएगा, दूसरे लफ्जों में कोई इमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। गलतियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि अगर हम शरीयत के तमाम हुक्मों पर अमल करें और एक को तोड़ दे तो सब हुक्मों में क्या है जी, मुजरम है। ये नौजवान बंदा जो शरीयत से वाकिफ है उस पर अमल करता आया है, 5 हुक्मों का यीशु ने उसके साथ जिक्र किया है और इन हुक्मों में वो कहता है मैं बचपन ही से लड़कपन ही से क्या करता आया हूं जी, इन पर अमल करता आया हूं। और यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है और वो कमी क्या है, अपना रुपया पैसा दौलत धन बाग सब कुछ कर दे, गरीबों को दे दे। और वो बंदा क्या होता है जी, आगे क्या लिखा है जी, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जब जब कोई यीशु से कीमत पूछता है कि तेरी निजात जिसके लिए दुनिया का कोई खजाना, जिसके लिए दुनिया की कोई और हस्ती, जिसके लिए दुनिया में और आसमान पर कोई और नहीं मिला कि उस निजात के काम को मुकम्मल कर सके, जिसके लिए पुराने अहदनामा के लाखों करोड़ों हदीये जो गुजराने गए पिछले 6,000 साल से, वो उस निजात को खरीद ना सके, तो यीशु से सवाल करता है कि तू क्या कर सकता है उसे खरीदने के लिए। और अगर यीशु ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कीमत आगे रखी है ये कर, तो वो कीमत चुका ना सका। और यीशु ने उसे कहा कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, मेरे पीछे हो ले, आकर क्या करना है मेरे पीछे हो ले। जब उसने ये हुक्म सुने, 3 हुक्म यीशु मसीह ने यहां पर उसको कहे हैं, अपना सब कुछ बेच दे, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा, ये मेरा वादा है। और क्या कर जी, मेरे पीछे हो ले। और जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है, ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बहुत दौलतमंद था, बहुत दौलतमंद था। इस दौलतमंद का वजह क्या थी कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुआ, उसके ईमान नहीं थे, उसका ईमान था। वो अपने ईमान पर तो यकीन करता था लेकिन यीशु मसीह पर, उसके बताए हुए हुक्म पर उसने यकीन नहीं किया। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान पर ईमान रखते हैं लेकिन ईमान पर ईमान नहीं रखते कि मेरा ईमान यीशु के कहे हुए कलाम पर है जो मुझे क्या कर सकता है जी, निजात दे सकता है। तो क्या हुआ, वो गमगीन होकर चला गया, बड़ा दौलतमंद था। और यीशु मसीह ने उसके इस हालात पर जवाब देते हुए क्या कहा, यीशु ने देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा, कलाम खुदा कहता है कि दौलतमंद होना क्या है जी, गलत बात नहीं। लेकिन अगर दौलत हमारे और खुदा के दरमियान रुकावट है, अगर दौलत इस बंदे की जिंदगी में निजात पाने के लिए रुकावट है, अगर ये दौलत उसे खुदा की मर्जी को पूरा करने में क्या है जी, उसके लिए दीवार बन रही है जिसे वो ढा नहीं सकता, अगर ये दौलत इस बंदे के सामने वैसे ही जैसे फलस्तीनियों और इसराइलियों की जंग के दौरान सौल और फलस्तीनियों की फौज के दरमियान जाति जूलियट खड़ा है और कोई भी लड़ने को नहीं जा रहा, अगर इसकी दौलत उसके सामने वो जाति जूलियट है कि उस पर वो गालब नहीं आ सकता, तो क्या है जी, ऐसी दौलत के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि वो दौलत क्या करेगी, उस आदमी के लिए, उस आदमी की बीवी के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए क्या है जी, बहुत मुश्किल है कि वो क्या हो जी, खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और यीशु मसीह ने बड़े अनोखे अंदाज में कहा, ऊंट को हम देखते हैं कितना बड़ा होता है, यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नके में से, यानी वो छोटा सराग जहां से हम धागा गुजारते हैं, अपने फटे हुए कपड़ों को सीते हैं, हम टाकी का पाबंद लगाते हैं, हम अपने कपड़ों को सीकर बटनों को लगाते हैं, उस छोटी से सुई के नाके में से यीशु ने कहा ऊंट का गुजर जाना क्या है जी, मुमकिन है। लेकिन जो दौलत पर भरोसा करता है, जो अपने ईमान पर भरोसा करता है और खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं रखता, उसके कहे हुए को कबूल नहीं करता, उसके लिए नामुमकिन है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और यीशु ने कहा कि ऊंट गुजर जाएगा लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। फिर याद दिलाना चाहता हूं, फिर इस पर जोर देना चाहता हूं, दौलतमंद होना बुरी बात नहीं। इब्राहिम दौलतमंद था, लूत दौलतमंद था, दाऊद दौलतमंद था, सुलेमान दौलतमंद था, उसके बाद फिर हम देखते हैं यकूब दौलतमंद था, बहुत से लोग दौलतमंद थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें और छोटे कद वाले जकई में फर्क क्या था, इसने अपनी दौलत को संभाले रखा, इसने अपनी दौलत को खुदा, अपना ईमान, अपनी निजात, अपना सब कुछ मांग लिया और यीशु को उसने कुछ भी नहीं जाना। उस सकई को देखते हैं, उसने क्या किया, जब यीशु को देखा, उसे सुना, यीशु उसके घर में आया, उसने उसे कलाम बताया, उसने कहा कि मुझे वो खजाना मिल गया है, उसे अपने जहन में कहा होगा, मेरे घर में वो हस्ती आ गई है कि ये दुनिया के दौलत खजाने जो लूट का माल मैंने इकट्ठा किया है, उस हस्ती के सामने कुछ भी नहीं। और उसने क्या कहा कि खुदावंद खुदा, मैं क्या करूंगा, जिनसे मैंने ना हक लिया है उनको एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, चार गुना वापस करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में क्या आई है जी, निजात आई है। इस दौलतमंद ने अपनी दौलत को खुदा जान लिया, उस दौलतमंद जकई ने जो सरदार था महसूल लेने वालों का, धन दौलत से वाकिफ था, उसने कहा यह दौलत यहीं पर रह जाएगी, मुझे वो खजाना पाना है जो हमेशा के लिए है। उसने यीशु को पा लिया। सो दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर दौलत रुकावट बनेगी तो वो क्या है जी, ऐसे हालात है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाएगा। दौलतमंद जो दौलत से प्यार करता है, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता, वो कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसीलिए खुदावंद के शिगिर्दों ने कहा, सुनने वालों ने कहा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि यही सवाल हम देखते हैं ईमाल 16 बाब उसकी 30 और 31वीं आयत में, जब पालूस और सलास फिलिपी के इलाका में सिंत्रोगा के सामने कैद खाना में बंद है, तो वहां पर क्या हुआ? पालूस और सलास को अभी अभी डंडे पड़े हैं, उनको जलील किया गया है, उनको कैद खाना में डाल दिया, और वो सारी रात प्रस्तुत करते हैं और खुदावन की तारीफ कर रहे हैं। कैद खाना हिल गया, दीवारें हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, कैदियों ने भागना शुरू कर दिया, और जो फिलिपी दरोगा था वो आया, उसने कहा कि ये क्या हो गया, मुझे अपनी हुकूमत को जवाब देना होगा, और उस जवाब में क्या होगा, उसे सरेआम रूमी सिपाही को क्या किया जाएगा जी, जलील किया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी किसी वक्त किसी मुजरम को भागने ना दे। उसकी सजा क्या थी कि जब कोई जेल से भाग जाता कि उस रूमी दरोगे को क्या था जी, जो फिलिपी दरोगा था, उसे क्या करना था, उसे मौत का सामना करना था। जब उसने सारे हालात देखे, दरवाजे खुले हुए हैं, दीवारें हिल गई हैं, जंजला आया है, कोई भी यहां पर नहीं होगा, उसने अपनी तवार निकाली और अपने आप को मारने की कोशिश की, तो पालूस ने कहा, ऐ साहेब अपने आप को जर ना पहुंचा, हम सब यहां पर मौजूद हैं। और जब उसने ये देखा, ये वाक्या सुना कि बिल्डिंग हिल गई, अजीब यहां पर काम हुआ, तो उसने क्या कहा, ऐ साहेबों मैं क्या करूं के निजात पाऊं? उसने क्या कहा, पालूस ने क्या कहा कि तू क्या कर, तू खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू क्या करेगा जी, निजात पाएगा। और उसने उसी वक्त क्या कर लिया, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, आप और उसका घराना क्या पाता है जी, निजात पा जाता है। यहां पर यीशु से यही कह रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, जैसे पालूस के कहे पर उसने दरोगे ने यकीन किया कि ईमान ला तो तू निजात पाएगा, मैं भी तुझे कहता हूं ईमान रख तो तू निजात पाएगा। तेरे हुक्मों पर अमल करना, तेरी दौलत, तेरा रुपया पैसा, तेरी कोई भी और चीज खुदा की हजूरी में तुझे इस लायक नहीं बनाएगी कि तू उस निजात का क्या कर सके जी, खरीदने वाला बने। क्योंकि वो निजात तो सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, यीशु खरीद सकता था। जब आसमान और जमीन और पताल और पूरी दुनिया में नजर की गई कि कौन है जो निजात को खरीदेगा, कोई रसूल नहीं मिला, कोई नबी नहीं मिला, कोई पैगंबर नहीं मिला, कोई और देवी देवता नहीं मिला, कोई फरिश्ता नहीं मिला, किसी ने हां नहीं की कि वो आसमान को छोड़ेगा, कि जमीन पर आए, इंसान बने, जलील हो, उसकी दाढ़ी नोची जाए, उसे छेदा जाए, उसे मारा जाए, उसे मसलूब किया जाए, उसको रद्द किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। एक ही मिला और वो यीशु मसीह था। उसने कहा कि मैं सारी शर्मिंदगी को बनी नू इंसान को खरीदने के लिए क्या करूंगा जी, अपने ऊपर ले लूंगा, मैं सताया जाऊंगा, रद्द किया जाऊंगा, मसलूब किया जाऊंगा, कब्र में उतारा जाऊंगा, और मैं सबको दिखा दूंगा कि कब्र में से जी उठने के बाद कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, दुनिया में कोई और नहीं है उस कीमत को अदा करे। और खुदा का बंदा पत्रस इसके बारे में बड़े वाज़ह तौर पर कहता है कि तुम्हारी निजात सोने चांदी से या फानी चीजों से नहीं, बल्कि क्या है जी, खुदा के उस बर्रे से हुई है जिसने क्या किया है जी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि तुमको क्या बना ले जी, अपनी मलकियत, और तुम खुदा की बादशाही के क्या हो जाओ जी, वारिस हो जाओ, वारिस हो जाओ। और वो कहता है ये सब कुछ किस लिए हुआ, ताकि तुम निजात पाओ, ताकि तुम ईमान लाओ, ताकि तुम ईमान के वसीला से क्या कर सको जी, यीशु मसीह की जिंदगी को खरीद सको। बहुत सी चीजें पैसों से खरीदी जाती है, अगर हमेशा की जिंदगी खरीदनी है तो उसके लिए क्या चलेगा जी, ईमान का कार्ड चलेगा। मेरे पर्स में एक कार्ड है, उस कार्ड से मैं 5 से 7 लाख रुपए की चीजें जहां कहीं भी हूं खरीद सकता हूं, लेकिन वो दुनियावी चीजें होंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या देता है, एक कार्ड देता है, और वो कार्ड क्या है, हमें खुदा के हजूर दिखाना होगा, खुदा के हजूर उस पर बयान करते हुए यकीन करना होगा कि ये कार्ड, जिस कार्ड पर किसका नाम लिखा है, मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। और उस कार्ड के बदले में हमें क्या मिल जाती है, हमेशा की जिंदगी मुफ्त तोहफे में मिल जाती है। अगर आज मैं आप में से कोई यहां पर है जो कहता है कि मुझे ये करना होगा, वो करना होगा कि हमेशा की जिंदगी का वारस बने, तो सादा तौर पर कहना चाहता हूं, यीशु पर ईमान लाएं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तो वो हमेशा की जिंदगी क्या है जी, आपकी है। हालेलुया। निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि मेरा रास पास बनता और बंदी किससे जीता रहेगा जी, ईमान ही से। मेरे साथ कहें, ईमान ही से, ईमान ही से। यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा जी, निजात पाएगा, यानी दोसर से निकलकर हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। आए हम खुदा के जुड़ चुके। अगर आज की सुबह कोई यहाँ पर है जिसने अभी तक अपना दिल यीशु मसीह को नहीं दिया, अभी तक अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज आपके लिए मौका है, उसे कहें कि यीशु तू मेरा निजात दहिंदा है। मैं इस निजात को ना रुपए पैसे से, ना अपने हुनर से, ना अपने हुक्मों से, ना ताबेदारी से, अगर कुछ करना है तो सिर्फ तुझ पर ईमान से पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। खुदा खुदा आज की सुबह अगर कोई यहाँ पर है तो उसके ईमान को, उसके इकरार को देख, ताकि वो यहाँ से मायूस ना जाए, ताकि वो यहाँ से हमेशा की जिंदगी की और का वारस होकर जाए, क्योंकि तूने कहा कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई तुझ पर ईमान लाए वो दोजख में ना जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारस बने। सब कुछ बड़ी बरकत दे, सबके ईमान से तू वाकिफ है, सबको खुदा खुदा अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में दुआ।